स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। आइए आज सुनते हैं मुल्कराज आनंद की अंग्रेजी में लिखी कहानी Why Does the Child Cry? इस कहानी का अनुवाद मैंने किया है। आशा है आपको भी कहानी उतनी ही पसंद आएगी जितनी मुझे पसंद है। अब्दुल लतीफ कुम्हार के बेटे को सब लेट लतीफ कहते थे। दरअसल बात ये थी कि 11 का होकर भी वो 7 साल के लड़के की चाल चलता था और स्कूल तो समय पर कभी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन चाल भले ही उसकी सुस्त हो, दिमाग उसका चुस्त था। मंथर गति से चलने वाले अब्दुल को पंछी बहुत पसंद थे। उसका मन करता कि बस किसी तरह उन्हें हाथों में पकड़कर घर ले आए। चलते चलते परिंदों की उड़ान को वो नज़रों से नापता और ऐसे में वो कहीं जाते जाते कहीं और ही पहुंच जाता। पंछी कभी हाथ नहीं आते। एक शौक और था उसका, अपने दोस्त अली मछुआरे के साथ पद्मा नदी के किनारे मछली पकड़ना। मछली पकड़ने में भी बहुत समय लगता और लेट लतीफ कहीं पहुंचने में और लेट हो जाता। एक दिन स्कूल में टैगोर का बांग्लादेश वाला गीत गाया गया। अब्दुल लेट लतीफ कुछ देर स्कूल के बाद वहीं ठहर गया ताकि वो उस गीत को अच्छी तरह से याद कर सके। गीत के बोल उसके मन को छू गए थे। धान के खेत और पद्मा नदी और मछुआरों की पुकार, ये सब उसे भी वैसा ही लगता था जैसे गीत लिखने वाले ने लिखा था। पर उसके पास ऐसे शब्द नहीं थे कि अपने माता पिता को अपनी बात कह सके, जैसे उसने जलाल के बगीचे से पपीता क्यों चुराया, या फिर कैसे जब एक दोस्त ने खेल खेल में उसका सर पानी के नीचे दबा दिया था तब अली ने उसे डूबने से बचा लिया था। अब्दुल के हरफन मौला मिजाज के चलते पिता ने उसे अहमक करार कर दिया था, लेकिन माँ उसकी देरी सुस्ती सब माफ कर देती थी। तब भी जब और लड़के कब के घर लौट चुके होते और अब्दुल का कोई अता पता नहीं होता, और तब भी जब माँ का कलेजा डर के मारे मुंह को आता था। आज वो माँ को बांग्लादेश वाला गीत सुनाएगा। उसने गीत कॉपी में उतारा, इलियास मास्टर को सलाम किया और पूरी शिद्दत और तेजी से 1 मील दूर अपने घर की ओर दौड़ चला। नदीनगर मछुआरों का गांव था जहां उसके माँ बाप मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अगर अपने नदीनगर में स्कूल खुल भी जाए तब भी वो दूर के बड़े गांव रंगपुर में स्कूल जाना पसंद करेगा। वो इसलिए क्योंकि मास्टर इलियास हर पीरियड में नई नई कविताएं सुनाते हैं, और उसके अपने गांव में कविता नहीं, बस मछुआरों के गीत जो वो नाव खींचते में जोर जोर से गाते थे, हीया हीया। सुनहरा बांग्लादेश, ये शब्द सुनहरा खूबसूरत घटाओं सा नदीनगर की टूटी फूटी खस्ता हाल झोपड़ियों पर छा जाता, उन्हें हकीकत से कहीं ज्यादा हसीन बना देता। घर तो वो देर सवेर पहुंच ही जाएगा, ये सोचकर वो रोज की तरह पद्मा नदी की तरफ हो लिया, रात के खाने के लिए मछली पकड़ने। उसे अपना दोस्त अली दिखा, मछुआरे जैनुल अब्दीन का बेटा। अली ऐसा निरा नालायक कि ना बोलने चालने का सलीका, ना पढ़ाई लिखाई में तेज। नतीजन उससे कोई बात नहीं करता था सिवाय अब्दुल लेट लतीफ के। ओ अली, अब्दुल ने पुकारा, लेकिन अली रुका नहीं। ओ अली, अब्दुल ने गहरी सांस खींच लंबी सी आवाज लगाई, लेकिन अली रुका नहीं बल्कि दौड़ने लगा और पद्मा से निकलते खलेज के रास्ते जो गिरे पेड़ थे उनके पीछे जा पहुंचा। अब्दुल को कुछ समझ नहीं आया तो हड़बड़ाकर वो भी अली के पीछे दौड़ा। जल्द ही उसकी सांस फूल गई क्योंकि उसके नन्हे गब्दुल्ले से शरीर ने इतनी मेहनत कभी की ही नहीं थी। रुका, रुक के फिर चिल्लाया, अली अली। अली ना पलटा ना कोई जवाब दिया और अब्दुल अपने दोस्त को निराशा भरे गुस्से से आंखों से ओझल होता देखता रहा। रोज अब्दुल उसके लिए चने लाता और फिर दोनों मिलकर मछली पकड़ने जाते, आज ऐसा क्या हो गया? अब्दुल को यकीन था कि अली ने उसकी आवाज जरूर सुनी होगी। एक बार लगा मुड़कर देखा भी, लेकिन फिर वो जानबूझकर भागा और कहीं जा छिपा। शायद माँ की संदूक में से मिठाई चुरा कर लाया होगा और अकेले अकेले बैठकर खाता होगा। ये सोचकर अब्दुल को रुलाई सी आ गई। हाल ही में कटे हुए इमली के ठूट से वो टिक कर बैठ गया तो उसने देखा अली दूर गिरे हुए केले के पेड़ों के बीच कूदता हुआ भागा जा रहा है। लेकिन यहां नदी के पास के झुरमुट के सारे पेड़ कब कट गए? गर्दन उचकाकर अब्दुल अली को देखता रहा, लेकिन अली रुका नहीं। गिरे हुए पेड़ों के बीच दौड़ता ही जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था। कभी दिखाई देता, कभी छिप जाता। सांस में सांस आते ही वो अली को जा पकड़ेगा। उसे यूं लगा कि जैसे वो अपने पिता के किसी घड़े सा है जो चटक गया है, जिसमें से कुछ आवाज ही नहीं निकलती। उसे पिता की कही बात याद आई, मेरे बेटे तू अभी कच्ची मिट्टी है, हम तुझमें जितनी बातें डाल लें तू वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे तू चूने लगेगा। फिर इस बात से ये बात याद आई कि अब्बा ने उसे कहा था कि स्कूल से सीधा घर आना और सारे घड़े गधी पर लदे होंगे, उसे लेकर रंगपुर में बनिया मुखिया की दुकान पर ले जाना। अब अब्दुल को यह सोचकर और भी खिजलाहट हुई कि एक तो अली के साथ मछली पकड़ने ना जा सका, क्योंकि अली न जाने कहाँ गायब हो गया। ऊपर से काम और पड़ गया सर पर। अनमने मन में माँ के वो शब्द याद आए जो हर परियों की कहानी के बाद वो सुनाती हैं, बच्चा ये रोए क्यों, बोल तू रोए क्यों, ओए चींटी क्यों काटे, चींटी मुझे काटे क्यों, कुटुर कुटुर कुटुर। अनपढ़ भले ही हो, माँ थी बड़ी मजेदार। जितने मास्टर इलियास ने गीत कविताएं सिखाई उससे कहीं ज्यादा माँ ने उसे कहानियां सुनाई। उसे खुद पता नहीं क्या कहती है, बस पद्मा के पानी की तरह बड़ड़ 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 करती है। कहती है कुछ जानना समझना बेकार है, सब अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो। अब्बा से उसे ये शिकायत थी कि 5 बार नमाज पढ़ने के लिए जानमाज न ला कर दी। अब्बा का कहना था कि वो खुद ही ऊपर वाले का रूप है, क्योंकि वो मिट्टी से घड़े बनाता है और अल्लाह मियाँ की इबादत की ज़रूरत क्या है, करना है तो खुद अब्बा की परस्तिश कर लो। अपने ख्यालों में गुम अब्दुल इमली के ठूंठ से टिका बैठा था, तभी उसकी नज़र कुछ दूर पड़े पेड़ के तने पर पड़ी। पास एक गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे में एक आर्मी का टैंक और उसके करीब 2 सिपाहियों की लाशें। वो उठा और वहां से भागा। माँ, जैसे अंतरात्मा से चीख निकल गई हो, माँ। लट्टू सा अंदर बाहर घूम गया था वो, नदी नगर की तरफ दौड़ा चला जाता था। रास्ते में जगह जगह कूड़े के ढेर थे जो खाद बनकर खेतों में डालने के लिए रखे थे। कहीं एक मोर चौंक कर चीखता हुआ उड़ा और सूने खेतों के बीच खो गया। रात का सन्नाटा खेतों पर छाने लगा था और कटीली झाड़ियां यूं लगती थीं जैसे जैसे पैने सींग निकाले भूत खड़े हों। अब्दुल टीले पर खड़ी नदी नगर की टूटी फूटी मछुआरों की झोपड़ियों में लालटेन की रोशनी के कतरे खोजने लगा। शायद अभी लालटेन जलाने का वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जो मछुआरे जल्दी खाना खाकर रात में मछली पकड़ने जाते थे वो तो शाम से ही लालटेन जला लेते थे। चांद की मानिंद एक टेढ़ी पगडंडी जो नदी नगर तक जाती थी वीरान दिखाई दी। जहां से बैलगाड़ियां निकली थी वहां जमीन में गहरे गड्ढे बन गए थे और फिर एक और टैंक जिसकी बंदूक आसमान की ओर रुक किए थी और उसके आसपास और लाशें। माँ, बरबस अब्दुल के मुंह से चीख निकल गई और फिर वो करीम के आलू के खेत की तरफ से घर की ओर दौड़ा कि कहीं उन मरे हुए सिपाहियों के जिन उसे दबोच ना ले। फूस की बनी आग की गेंद के जैसे उसे लग रहा था कि वो पल भर में राख हो जाएगा। उसके घर का अहाता मस्जिद से लगा था जहां उसके पिता ने पीर की दरगाह से थोड़ी सी जमीन कब्जा ली थी। माँ, बच्चे ने आवाज दी। गले में आवाज यूं अटक रही थी जैसे पीर का भूत उसे खेत से अहाते तक जाने से रोक रहा हो। काश अली भागा ना होता। कुछ अपना खोजते हुए उसने पिता की गधी को पुकारा। ओ बेगम, बेगम गधैया, तेरी पीठ पे घड़े लद गए क्या? भूत जिन्नों के डर से भागता वो अपने अहाते की चौखट तक पहुंच गया था, लेकिन जो आगे था वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। टूटे हुए घड़े बिखरे हुए थे और उनके नीचे दबी बेगम, भक सफेद चेहरा, मुंह खुला, दांत निकले हुए। हां या अल्लाह, अब्दुल का गला रुंध आया और वो वहीं टूटे घड़ों के बीच गिर गया स्तब्ध। सांस फूल रही थी और सर घूम रहा था। घुटने छिल गए थे, होंठ खुले थे, पर सूखे गले से आवाज नहीं निकलती थी। पसीना माथे से टप टप बहता और आंसुओं में मिल जाता। वो वहीं बेहरकत पड़ा रहा, जैसे जरा भी हिलने से उसके अंदर भरी चीखें उसकी छाती फाड़ कर बाहर निकल जाएंगी। बस एक अब्बा का हुक्का था जो सवालिया सा वहां रखा था। अब्दुल उठा और उसने ढाई हुई पूस की दीवार उठाने की कोशिश की, पर जब उठा ना सका तो टूटी गिरी हुई दीवार और जमीन के बीच बनी जगह में सर घुसाकर झांकने लगा। मां, पुकारा और फिर ये सोचकर सहम गया कि कहीं मां मर तो नहीं गई, कहीं मां का जिन उसे पकड़कर अपने गले ना लगा ले, कहीं रोने ना लगे उसे अपने से चिपकाकर, और फिर फरिश्ता जिब्रैल मां के साथ साथ उसे भी ले जाएगा। पर अंदर कोई नहीं था। अंधेरे में हाथ फैला वो जमीन टटोलता रहा कि शायद कुछ मिले, शायद कुछ। कुछ क्या? क्लाश? और इस खौफनाक ख्याल से फिर एक दबी सी कराह निकली। मां, अब्बा, वो तो हमेशा उसकी बात सुनते थे। उसने फिर आवाज लगाई, अब्बा। कोई जवाब नहीं, बस एक उमस भरी खामोशी उस गिरी हुई छत और जमीन के बीच, और बास फूस पसीने और गीली मिट्टी की। धीरे धीरे सरक कर वो बाहर निकला। चेहरे और हाथों में लगी खरोंचें दर्द करती थी। अहाते के कोने में जा वो फिर पसर गया, पसीने से लथपथ, अंदर तक खाली, कच्चे घड़े सा, जैसा उसके पिता ने कहा था। लेकिन अब के वो चटका नहीं था, टूट गया था। कहाँ गए सब, कहाँ? खामोश सिसकियां ले उसने पूछा। मैं कहाँ हूं? जमीन पर पड़ा वो कान लगा सुनता रहा कि शायद कहीं से कोई आहट आए, गोली की या टैंक की गड़गड़ाते पहियों की या सिपाहियों को निर्देश देते फौजी अफसरों की। गर्दन उठाकर देखा कि नदी नगर की सभी झोपड़ियां तहस नहस कर दी गई हैं। सिर्फ एक सन्नाटा लौट लौट के आता है, जिसमें गूंजती है जिन्नों और भूतों की खौफनाक चिंगाड़। मास्टर लियास ने कहा था कि फौजी गांव के गांव तबाह कर रहे हैं। मां, आखिर एक चीख निकली भीतर कहीं से, छाती में टकराती, गले को चीरती। मां, और फिर सन्नाटा। कहीं एक भुनगा भिन भिन कर रहा था और उसी ओर दूर कहीं से एक मशीन गन की गोलियों की आवाज नदी किनारे से आ रही थी। अली वहां मछली पकड़ता होगा। अब्दुल अब नहीं रुका। अगर उसके माँ बाप यहां नहीं, गांव वाले नहीं, तो बस एक ही इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है, अली। उसने अपने दोस्त को जिंदा देखा था, उसे पद्मा नदी की तरफ दौड़ते देखा था। उसे जाकर अली को खोजना चाहिए और उन्हें साथ ही रहना चाहिए, अब जबकि वो शब्द वो मुंह से कहना नहीं चाहता था, लेकिन दिमाग में वो शब्द घर कर गया था, अनाथ। इस शब्द की दहशत को बर्दाश्त कर सकने का एक ही तरीका था, ये ख्याल कि अली भी शायद अब अनाथ हो गया हो। अली के पास जाने की उसने सोची तो, लेकिन उसके लिए किसी तरह खुद को उठाना होगा और फिर पीर की मजार से होकर पद्मा तक जाना होगा। माँ, उसने फिर पुकारा। हाथ पांव शिथिल पड़ गए थे, जैसे जैसे वो खुद ही मर गया हो। लेकिन उसे अपनी सांसों की उतरती चढ़ती आवाज सुनाई देती थी। जिंदा हूं, वो बुदबुदाया। बच्चा ये रोए क्यों? बोल, तू रोए क्यों? मां के अगड़म बगड़म गीत उसे याद आ रहे थे। चींटी मुझे काटे क्यों? किसी तरह उसने कांपते घुटनों पर खुद को संभाला। सर उठाकर ऊपर देखा तो आसमान में एक तारा निकल आया था। वो तारा उसे जैसे रात को भेद दूसरी तरफ जाने की हिम्मत दिला रहा था। जेब में हाथ डाला तो उंगलियां चने के दानों से टकराई। मैं अली को सब चने दे दूंगा, फिर तो वो मेरा दोस्त रहेगा। ताकत जुटा वो चल निकला। जिन्नों और भूतों के डर से उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। उसे वो दिन याद आया जब अली ने उसे डूबने से बचाया था। अली, रुक जा मेरे दोस्त, रुक। और एक सिहरन उसके अंदर कौंध गई। ये सोचकर कि जब उसे अली मिलेगा वो उसकी कमर के गिर्द अपनी बाजू डाल देगा और वो चल देंगे एक दूसरे की कमर थामे। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई शैतानी कर घर लौट रहे होते थे और जानते थे कि आज तो माँ बाप से डांट पड़ने वाली है। अली, अंधेरे में उसने फिर पुकारा। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।